آیات کا خلاصہ تو ہم نے کر لیا، لیکن اب اس میں سے چند باتیں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی تفصیل سے پڑھنا حقیقت میں ہر اہل ایمان کو اچھا لگتا ہے. جسے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننے میں خوشی ہوتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کی بات کی جائے. تو ابھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کو دیکھا، اس میں سے اگر ہم ان کو چند چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز دے دیں تو انشاءاللہ جو بات ہوئی ہے میں اس کو خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے نبوت. شاہد کے لفظ کو آپ تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. شہادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتی ہے وہ تین طرح سے ہے. نمبر ایک، آپ کی شہادت قولی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قولی شہادت یا شہادت حق کی گواہی. ساری زندگی اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے، اپنے اقوال سے اللہ کے دین کی سچائی کو بلند کرنا، لوگوں میں اللہ کے نام کو بڑا کرنا، اس کی توحید، اس کے فرشتے، اس کی طرف سے نازل کردہ وحی، یعنی زبان سے بول کر آپ شاہد بنے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کسی بھی عدالت میں جا کر گواہی دیتے ہیں کہ گواہوں کو بلائیے، تو ایک معنی ہے. اور یہ ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے لیے اللہ کے نبی دیوانہ کہلائے، اسی کے لیے مجنو کہلائے، اسی کے لیے کاہن کہلائے، آپ کے بیٹیوں کے رشتے ٹوٹے، لیکن اب کسی کی بات کی پرواہ کیے بغیر ہانکے پکارے یہی کہتے رہ گئے کہ لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور آج امت مسلمہ سے یہی شہادت مقصود بھی ہے. ٹھیک ہے، قولی شہادت ہے. دوسری آپ کی شہادت کا جو طریقہ تھا وہ تھا عملی شہادت، عمل کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور آپ نے لوگوں کو ایک ایسا کردار پیش کیا کہ جو قابل عمل تھا. آپ کے بارے میں آپ کی بیوی نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق، ان کا اخلاق تو قرآن تھا. تو گویا کہ اللہ کے نبی کا وجود بھی اصل میں ایک بیشینہ. آپ کہتے ہیں کہ سورۃ البیشینہ 30ویں پارے کی، کہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وہاں بیشینہ اللہ کے نبی کو کہا گیا. یعنی جس طرح آپ کے اور بہت سارے معجزات ہمیں دکھتے ہیں، آپ کا اپنا کردار بھی ایک معجزہ تھا. کوئی شخص ہیومنلی اتنا پرفیکٹ کریکٹر کا ہو نہیں سکتا جتنا اللہ کے نبی تھے. تو یہ ایک قسم کی ایسی گواہی تھی آپ کی کہ جس کا ایک دفعہ آپ سے واسطہ پڑ جاتا، پھر وہ شخص حقیقت میں آپ سے متاثر بھی ہوتا اور آپ سے فائدہ بھی اٹھاتا. تیسرا، آپ کے شاہد ہونے کی حیثیت اخروی شہادت سے متعلق ہے. یعنی قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور سارے نبیوں کو گواہیوں کے لیے بلایا جائے گا اور ان کی قومیں ان کو جھٹلا دیں گی، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شہادت پہ کھڑے ہوں گے اور آپ وہاں گواہی دیں گے، اور پھر ہم امت مسلمہ بھی اس وقت باقی نبیوں کی سچائی کی گواہی دیں گے. مضمون پیچھے گزر چکا ہے، یہاں سب کو صرف پائل اپ کروانا چاہتی ہوں. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو شہادت کے مقام پہ کھڑا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی، اور اس کے لیے کیسی عظیم شخصیت چاہیے جو اس مقام پر کھڑی ہو سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو دین حق کی قولی شہادت میں کوئی کمی چھوڑی اور نہ عملی شہادت میں. انہی گواہیوں کی بنیاد پر تو آخرت میں گواہی دیں گے. پھر دہراتی ہوں، جو بندہ اپنے قول اور اپنے فعل سے دنیا میں اللہ کے نام کو بڑا کرتا رہے گا، قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دوسری باتوں کو ویریفائی کرنا، اس کی گواہی دینا اتنا مشکل نہیں رہے گا. بعض لوگوں نے لفظ شاہد سے حاضر اور ناظر رکھا اور کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی حاضر ہیں ناظر ہیں تبھی تو گواہی دیں گے. حالانکہ آج آپ اور میں اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم میں سے کسی نے جا کر ایبٹ آباد میں نہیں دیکھا آج تک جہاں زلزلہ آیا تھا، لیکن ہم نے گھر بیٹھے خبروں کو دیکھ کر، تصویروں کو دیکھ کر جان لیا کہ وہاں زلزلہ آیا. تو کسی چیز کی گواہی دینے کے لیے آج کے دور میں بھی وہاں جا کے رہنا، آنکھوں دیکھنا ضروری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بڑی بات ہے. باقی رہ گی وہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہ عقیدہ گھڑ لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہر چیز کو دیکھ دکھا رہے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے. قرآن تو میں یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اپنے فرشتے اس کے اوپر حاضر ناظر رکھے ہوئے ہیں. سورۃ قاف میں آپ پڑھتے ہیں نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا کہ فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے. تو لہٰذا ساری بات کا خلاصہ کہ گواہ تو ہمارے اعضا بھی ہیں، और अंबिया कराम तो कौमों के ऊपर वही गवाही दे सकते हैं जो उन्होंने देखी थी। सूरत मायदा आयत 109 में हमने देखा, यौम यजमउल्लाहु रुसुला फयकूलु माज़ा उजिबतुम कालू ला इल्मा लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, कि अल्लाह उस दिन रसूलों को जमा करके पूछेगा कि बताओ तुम्हें उस दावत का क्या जवाब मिला, तो वो कहेंगे हमें तो कुछ नहीं पता, गैब को तो आप ही जानते हैं। तो गोया कि ये गवाही तो बाकियों से भी होगी। हजरत ईसा की गवाही का तस्करा सूरत मायदा की आखिरी आयतें हैं 117। वकुंतु अलैहिम शहीद मा दुमतु फीहिम फलम तवफ्फैतनी कुंत अंत रकीबा अलैहिम, ये कौल हजरत ईसा का होगा क्यामत के दिन। फिर इसी तरह आप देखिए उम्मत वसत के शहीद और गवाह होने का जिक्र सूरत बकरा 143 में ही है। वकजालिका जालनाकुम उम्मतम वसता, सूरत नहल आयत 89 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व यौम नबसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जी ना भी का शहीदन अला हाउला। आखिरी हिस्सा काबिले गौर है कि सब की गवाहियां जब होंगी तो ए नबी हम आपको गवाह बना कर लाएंगे। तो गोया के अल्लाह के नबी को ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दी, ये बहुत बड़ी है और इस पे बहुत सारी रिवायतें हैं। हमें सिर्फ इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि कहीं कल अल्लाह के नबी की गवाही और आपकी सिफारिश की बजाय हमारे ऊपर हुज्जत ही तमाम ना हो जाए। इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल हुआ है, शाहिदम व मुबशिरम, अब लफ्ज़ मुबशिर जब भी आएगा और मुनजिर दोनों को साथ ही ले लीजिए तो बात ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आप देखिए जब नबी सल्लम को आप मुबशिर कहते हैं ना, तो इसके अंदर फिर चार चीज़ें, यानी आपको मिसाल है कि कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात की खुशखबरी देती हूँ, तो जब आप किसी को किसी बात की खुशखबरी देते हैं तो उसके अंदर चार चीजें होती हैं। पहले उर्दू में बताऊंगी तो इंशाल्लाह फिर आसान लगेगा। पहली चीज क्या होता है? मुबशिर, खुशखबरी देने वाला। दूसरा है मुबशर, जिसको खुशखबरी मिलती है। ऐसी है ना, आप किसी को भी कुछ कहते हैं तो फिर आप भी होते हैं और वो भी होता है जिसको आपने कहा था। फिर तीसरी चीज होती है जिस चीज की तरफ खुशखबरी दी जाए, यानी मुबशिर बिही, वो क्या होती है? जन्नत। यानी अल्लाह के नबी मुबशिर थे, किस चीज के मुबशिर थे? जन्नत के मुबशिर थे। फिर इसके बाद अगली चीज क्या आती है कि सबब, यानी क्या असबाब हैं कि जिसकी वजह से खबर दी जा रही है। तो मुबशिर, मुबशर, मुबशिर बिही और सबब बिही, चार चीजें लाजमी है। अल्लाह के नबी मुबशिर किस चीज तरह से थे? आप खुशखबरियां देते थे। हम कौन हैं? अगर हमने अमल साले कर लिए तो हम मुबशर हैं। किस चीज की खुशखबरी थी? जन्नत मिलेगी। सबक क्या है? आमाल साले, अमल साले जिसका तस्करा हम पढ़ते। सेम यही चीज नजीर में भी है, मुनजिर, मुनजर, मुनजर भी ही और सबब भी ही। फिर इसी तरह आप देखिए जहां लफ्ज आता है दाईया निरल्ला, इसको भी गौर से समझिएगा। लफ्ज दाई, दावत देने वाला, पुकारने वाला, मदऊ जिसको बुलाया जाए, जैसे हम कहते हैं हम खाने पे मदऊ हैं। दावत किस चीज की है? इल्लाह। ये जो लफ्ज इल्लाह है ना, ये है कि ला मकसूद इल्लाह, ला मतलूब इल्लाह। यहां से पता चलता है कि नबियों ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाया, ना तो कहा कि दाई इलन्नास, इला कौमियत, इला मसलक, इला जमात, इला गो, इवन इलैया भी नहीं कहा कि दाई इलैया, आओ मेरी तरफ, ये भी नहीं कहा। फिर आगे जो लफ्ज है ना बेइज्जती, अल्लाह का इज़्ज़त दो तरह का होता है, कौनी और शरई। कौनी वही है जिसको हम दुनिया में होने वाले कुन फयाकुन से समझ सकते हैं, जो भी जलजले आते हैं, सैलाब आते हैं, कुछ भी आते हैं, ये सब अल्लाह के इज़्ज़त से आते हैं। और शरई इज़्ज़त क्या होता है? जिसका अल्लाह ने हुक्म दे दिया कुरान में और हदीस में। अल्लाह ताला की मदद, उसकी तौफीक और उसकी ताईद के बगैर कोई बंदा दाई अनिलल्ला बन नहीं सकता। थोड़ा सा फर्क है, आज भी तो दाई दीन होते हैं ना, जैसे पूरी उम्मत मुस्लिमा दाई दीन है। फर्क क्या है? नबी के लिए दाई दीन बनना फर्ज होता है, चॉइस नहीं होती। उम्मत के लिए बोल के, जुबान से, या जिस तरह इसको आप लिटरली आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनली दाई बनना, ये उसकी चॉइस होती है। ये अलग बात है कि उम्मत मुस्लिमा का हर शख्स जो है वो अपनी जात के साथ अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह के नबी के लिए लफ्ज है सिराजम मुनीरा। सिराजन का लफ्ज समझते हैं, सीन रॉ जीम इसका रूट है। सरजा कहते हैं हसीन और चमकदार चीज को। घोड़े के ऊपर एक काठी सी डाली जाती है, कभी देखिए लकड़ी की ऐसे छोटी छोटी फटियां और बीच में रोप्स जोड़ के जिसपे बैठने वाला बैठ जाता है, पांव टिका लेता है, उसको सरज कहते हैं। अरबी जुबान का एक शेर भी है, वाज सु मकान इन सर जु साहिन, सबसे बुलंद मुकाम पर वो है जो तेज रफ्तार घोड़े की पुश्त पर बैठा है। वह खैरु जली सफिस ज़मानी किताबुन, जमाने की बेहतरीन साथी किताब है। इसमें लफ्ज़ सरजा इस्तेमाल हुआ है घोड़े की काठी के लिए। इसी से लफ्ज़ सिराज भी है सूरज को, और सूरज लफ्ज़ भी इसी से ही है। चिराग कौन सा सूरज या चिराग कौन सा सिराज होता है जो खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशन करे। यहाँ से भी आपको अल्लाह के नबी की बात समझ आती है। और हकीकत है कि आपसे पहले दुनिया में शिर्क लाइल्मी जहालत के अंधेरे थे, बेमकसदियत की घटा टोप बदलियाँ थी। अल्लाह के नबी सल्लम आए दुनिया में और अंधेरे दूर हुए। सारी जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी में मस्जिद नबवी में चिराग नहीं जला। आखिरी दिनों से मुराद ये कि लास्ट डेज ऑफ द प्रॉफिट थे, तो तब पहला चिराग हजरत आयशा कहती हैं कि मस्जिद में जलाया। किसी ने कहा कि इतना पहले क्यों नहीं जले, कहने लगी कि अगर तेल होता तो जलाने की बजाय खा ना लेते, क्योंकि एक ही तेल जलाते थे, सरसों का तेल ही खाते थे, वही जलाते थे अमूमी तौर पे। हत्ता के नबी सल्लम पे जब नज़ा का वक्त था, उस वक्त भी उधार मांगकर कुछ तेल लाकर उस चिराग को जलाया गया था। लेकिन आप देखिए कि मस्जिद नबी अंधेरी थी, लेकिन दुनिया में किस तरह बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही थी, कितना दीन इस्लाम फैल रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी में जितने चिराग और लाइट्स हैं उसको कोई काउंट नहीं कर सकता, वो भी कंप्यूटर पे गिनी होगी तो पता होगा। लेकिन इर्द गिर्द लोग देखिए कि बिल्कुल बेमकसदियत में जी रहे हैं। तो याद रखिए कि दुनिया में तब्दीलियां रोशनाइयों से नहीं आती, बल्बों और ट्यूबों से नहीं आती, इंसानों से आती हैं। आज भी दीनदारों को इसका पूरा एहतमाम करना चाहिए कि जाहरी बिल्डिंगों को बढ़ाने से जाने के बजाय वो किरदार पैदा कर दिए जाएं कि जिनको किसी छत के नीचे भी बिठा दिया जाए तो वो उम्मत की तब्दीली का जरिया बन जाए, सफर बन जाए। और हकीकत है कि मस्जिद नबवी की अंधेरी छतों के नीचे से वो सहाबा कराम इल्म के मुनव्वर चिराग बनकर निकले, जिन्होंने फिर अपनी रोशनी पूरी दुनिया में फैला दी। अमूमन लोगों की रोशनी औलाद के नाम से होती है, कहते हैं औलाद नाम रोशन करेगी। ये जितनी हम आयतें पढ़ रहे हैं ना नबी सल्लम के बारे में, ये अल्लाह के नबी सल्लम के उस पिछले सारे दर्द को यहाँ पेश किया जा रहा है कि आपके बारे में लोग क्या क्या बातें करने लग गए थे, लेकिन अल्लाह ने आपके जरिए से कितनी ज्यादा खैर की बात की थी। और असल में ये हजरत जैनब के साथ निकाह के मौके पे जो प्रोपेगंडा था, आप कह लें कि सोसाइटी में एक शख्स नबी सल्लम के खिलाफ बोलता है तो अल्लाह तआला का कलाम उसकी गवाहियां देता है कि नहीं, इनको क्या पता है, ये इस नबी का मुकाम क्या जाने। तो ये आयतें हम सबको बताती हैं। तो गोया के फिर आप देखिए, सात सिफात हमने इन दो आयात में पढ़ी हैं। नंबर एक, नबूवत, रिसालत, शहादत, बशारत, इंजार, दाई और हिदायत। हिदायत किधर है? सिराज मुनीरा में। बाकी सारी बाजें नबी सल्लम की ये सारी सिफात जो हैं ये तौरात में भी आती हैं। नबी सल्लम की एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है जिसमें हमें पता चलता है कि ये सिफात जिसका तज़किरा यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ये अपने वक्त में तौरात के अंदर भी मौजूद थी। और ये पढ़ने के बाद तो हकीकत में दिल को इतनी खुशी होती है कि अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत नबी दिया कि जिसका जिक्र अपनी किताब तो अपनी किताब है, दूसरी किताबों में भी मौजूद है। रिवायत सुना देती हूँ पढ़ के। ऐ नबी, हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर और बशारत देने वाला और डराने वाला और पनाह और हफीज और अमीन, यानी अरब की, आप मेरे बंदे और रसूल हैं। मैंने आपका नाम मतवक्किल रखा, यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला। ना आप तुंद हूँ हैं। अब आप ये सारी लिस्ट बना लें और अपने लिए चेकलिस्ट रख लें कि मेरे अंदर ये सिफात हैं कि नहीं, और ये तौरात में मौजूद हैं सिफात, और आप नबी सल्लम ने खुद बताई। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास की ये रिवायत है कि अल्लाह के नबी की ये सिफात और आत में मौजूद हैं। तो कौन सी सिफात हैं? शाहिद, बशारत देने वाला, डराने वाला, पनाह और हिफाजत देने वाला, फिर इसी तरह मुतवक्किल, भरोसा करने वाला। ना आप तुंदखू हैं, ना सख्त मिजाज हैं, और ना बाजारों में शोर मचाने वाले। आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते बल्कि माफ कर देते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? आपको अल्लाह ताला दुनिया से उस वक्त तक वापस नहीं लाएंगे जब तक आपके जरिए से टेढ़ी उम्मत को सीधा ना कर दें। सुभान अल्लाह। और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे, आपके जरिए अल्लाह अंधी आंखों, बहरे कानों और बंद दिलों को खोलेगा। तो दुआ कीजिए कि आज मेरा और आपका दिल भी खुल जाए, हम अल्लाह के नबी सल्लम से वो मोहब्बत महसूस करने लग जाएं जो जरूरी है। अब अल्लाह के नबी के इतने वसफ बयान करने के बाद अगली जो आयतें अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बुनियाद फिर वही है जो प्रोपेगंडा था, जो सोसाइटी में बेचैनियां थी। लेकिन अब आयत नंबर 49 से 52 में कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने शुरू में अर्ज किया था, हर लीडर के लिए कुछ ना कुछ खास चीजें होती हैं, मतलब उस पे लाइबिलिटीज भी होती हैं और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये सारी आयत इसी को बताती। एक छोटा सा रेफरेंस और बता देती हूँ। हमने जो आयत पढ़ी थी कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, तो जो स्पिलुल जना क्लास में हमारा कोर्स था उसमें हमने तकरीबन 34 टाइप की डिफरेंट चीज़ें मैंने इनको लिखाए थे। इमाम इब्ने कय्यम की बहरहाल एक कॉल है, किताब है, जिसमें से इनको कोट कराए गए थे कि जिक्र के 100 फवाद। लेकिन आप इसकी डिटेल लेना चाहें तो इन्हीं आयतों की तफसीर स्पिलुल जना के सर से सुन ले, इंशाल्लाह आपको उसको मिल जाएंगी। पहला ये कि शैतान को जलील और रुसवा किया जाता है इसके ज़रिए, फिर अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनूदगी मिलती है, तमाम परेशानियां दूर होती हैं। नंबर बोले बगैर मैं सिर्फ बस गो थ्रू कर देती हूँ। दिल में खुशी भरती है, बदन को ताकत मिलती है, दिल और चेहरे को रोशन और नौरानी करता है जिक्र, रिस्क में कसरत होती है, दूसरों पर रोबतारी होता है यानी मरूबियत आ जाती है ऐसे शख्स के लिए लोगों के दिलों में, मोहब्बत इलाही मिलती है, इल्म का दरवाज़ा खुलता है, सबीलुल जन्ना है यानी जिक्र जो जन्नत का रास्ता है, फिर इसके जरिए से मुहासबे नफ्स की खूबी पैदा होती है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू बढ़ता है, अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है, मार्फत के दरवाजे खुलते हैं, बंदे के दिल में अल्लाह की अहमियत आ जाती है। जिक्र करने वालों का जिक्र अल्लाह ताला आसमान पे करते हैं, और जिक्र दिल की जिंदगी का सबब है, दिल का जंग उतारता है, गुनाहों की आदत खत्म हो जाती है, अल्लाह और इंसान के दरमियान अजनबियत खत्म हो जाती है, बाहमी राबतों को मजबूत करता है। अच्छे दिनों में अल्लाह को याद करने से अल्लाह ताला बुरे दिनों में जल्दी सुन लेता है, अज़ाब इलाही से निजात का जरिए, आराम और सकीनत नाजिल होती है। जी, चुगली, गीबत, गाली गलौज से बचता है। ज़ाहिर है जब कोई जिक्र कर रहा है तो वो चुगलियाँ तो उस वक़्त नहीं कर सकता ना। जिक्र की मजालिस फरिश्तों की मजलिसें बन जाती हैं, खुद भी नेक और साथ बैठने वालों की भी किस्मत अच्छी हो जाती है। तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करने से अर्श इलाही का साया मिलेगा, जो जिक्र में मशगूल हो इसको बिन मांगे मिलता है। जिक्र आसान तरीन इबादत है, जिक्र से जन्नत में दरख्त लगते हैं, और जितना अल्लाह को याद करेंगे शैतान से उतना दूर भागेंगे। तो ये चंद चीज़ें थी उन 100 चीज़ों में से। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि वो हमें इसकी तौफीक अता फरमा दें, क्योंकि अब अगली आयतों में जाना है तो बार बार चीज़ पीछे जाने को सही नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि हम अब आगे चलते हैं आयत नंबर 49 से। बिल्कुल आयली ज़िंदगी के काम आते, और इसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिनका जिक्र सूरह बकरा में गुजर चुका है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मोमिनात, अहले ईमान, जब तुम मोमिन ख़वातीन से निकाह करो, तुम करो, इसका मतलब है कि मर्द अपना निकाह कर सकता है, सुम्मा तल्लक़तुमुहुन्ना, फिर तुम उनको तलाक दे दो, मिन कबल अन तमस्सूहुन्ना, कबल इसके कि इनको छुओ, मस किया हो। बिल्कुल सूरत बकरा की आयत नंबर 236 और 237 में जो बात थी उसी का इरादा है इधर, यानी कबल अज खलवत तलाक। खलवत क्या होती है? शौहर बीवी का ऐसा वक्त साथ गुजरा हो, यानी तन्हाई का वक्त हो जिसको आप कह सकते हैं। अब ऐसा वक्त अगर कोई साथ गुजार लेता है तो वो फिर खलवत आ गई। अब इस सूरत में अगर ये मौका ना बना हो और उससे पहले कोई हालात बिगड़ गए तो तलाक होगी, तो मेहर क्या होगा? अल्लाह ताला ने इसका तذکرہ वहां भी किया था कि कुछ दे दिला दो। फरमाया फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन, तो तुम्हारी तरफ से इन पर कोई इद्दत लाजिम नहीं है कि ता तदू नहा, कि तुम उसकी गिनती पूरी करो। सूरह बकरा में हमने पढ़ लिया था कि ऐसी औरत का अगर मेहर मुकर्रर ना हो तो रुख्सती से पहले ही अगर तलाक का मौका बन जाए तो ऐसी बीवी को कुछ ना कुछ देकर रुख्सत कर देना चाहिए, और अगर मेहर मुकर्रर हुआ हो और रुख्सती ना हुई हो तो फिर आधा मेहर दिया जाएगा। अब यहां है इद्दत की बात, वहां इद्दत की बात उस तरह नहीं थी कि इद्दत कोई नहीं ऐसी औरत की। शौहर और बीवी जब अलग हो जाते हैं ऐसी सूरत में कि तन्हाई नहीं मिलती, तो फिर उसके बाद इद्दत नहीं होती। मकसद क्या कि इद्दत का मकसद तो एक साफ था, इस्तबराए रहम, रहम का पाक होना। तो जब इसकी नौबत ही नहीं आई, खुलवत ही नहीं हुई उस तरह से, तो प्रेगनेंसी का तो कोई शुबा भी नहीं है। हाँ, करो क्या, फमत्तिउहुन्न वसर्रिहुहुन्न सराहन जमीला, बस इन्हें कुछ दे दिलाकर बड़ी खूबसूरती के साथ रुख्सत कर दो। यहाँ भी ये बात आ रही है और सूरत तलाक में भी कुछ जिक्र आएगा। अब यह आयत तो हम बहुत तफसील से समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ फिर एक छोटा सा इशारा जो फीस माना बहुत ही बड़ा मसला बनता जा रहा है, और ये मुझे कैसे पता चलता है? लोगों के सवालात से। अल्लाह ताला सब के ऊपर रहम करे, लेकिन अब हालात ये होते जा रहे हैं कि पहले लोग कहते थे मंगनी कर दो, फिर कुछ साल मंगनी रहती थी, फिर पता चलता था मंगनी टूट जाती है। अब होता यह है कि लोग मंगनी की बजाय निकाह कर देते हैं, फिर बाद में निकाह के बाद इतनी ज्यादा कन्वर्सेशंस और बातें होती हैं कि रुखसती से पहले ही घर टूटते हैं। ये कई केसेस आ चुके हैं इन दिनों में मेरे पास। तो उन्हीं में से जब अब जाहिर है कि अल्लाह का हुक्म है, अब कोई मसला पूछता है, अच्छा जी रुखसती नहीं हुई फिर अब क्या करें, तलाक ले लें बजाय इसके कि ये अभी से लग रहा है जहन नहीं मिल रहा, और जो हालात भी हो सकते हैं, तो फिर मुझे ये बात उनसे पूछनी पड़ी। बिलीव मी, यानी सिर्फ नाम का निकाह होता है वो। आप बच्चे बच्चियों को इस तरह से रुखसती के बगैर छोड़ते हैं, ये उनके लिए भी फितना है। अब ये बात तो माँ बाप को पता है ना कि रुखसती नहीं हुई। हम समझते हैं रुखसती कहते हैं दुल्हन बना के दोबारा स्टेज पे सजाना और बड़ा सा खाना खिलाना और फिर जोड़े देने लेने। रुखसती इस चीज का नाम नहीं है। मसले बदल जाएंगे। आपकी नजर में वो लड़की बिल्कुल अभी अपने घर की है, लेकिन निकाह के बाद जब लड़कियां लड़के आपस में मिलते हैं आते जाते हैं, रुखसती हो गई। जरूरी तो नहीं है कि शौहर बीवी हमेशा साथ मिलें तो वो कोई ताल्लुक ही कायम करें। जिस वक्त में ताल्लुक कायम होने का खदशा है या उम्मीद है, हो सकती है, आप ये तो वही जानते हैं ना, शरण गुना नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन खुदा ना खास तो शौहर का इंतकाल हो जाए। रुखसती से पहले लड़की की शौहर मर गया तो आपको पता है कि बेवकी की इद्दत फर्क है, उस तरह की फर्क है, तलाक हो गई। तो इस फी जमाना सिलसिले में अगर ये हालात हो जाए तो लड़की लड़के को ये सब मसाइल साफ तौर पर बताने चाहिए, और अगर ये हो गए तो फिर रुखसती का खेल क्या, फिर क्यों लोगों को जमा करें, फिर क्यों दोबारा सारा खेल खिलाना करें, हो गई तो हो गई। तो बहुत चीजें ऐसी होती है जो अल्लाह की नजर में गुनाह नहीं होती, लेकिन लोगों की नजरों में सच्चे होने के लिए हम फिर हजारों लाखों खर्च कर देते हैं। ये सिर्फ हमारी एक रस्म है, अनाउंस कर दीजिए कि बात हो गई है, और जब सहूलत होगी उसके बाद ये साथ रहना शुरू कर देंगे। तो बहरहाल यहाँ ये चीज अलग से दूसरी दफा आई है, सूरह तलाक में भी पढ़ेंगे। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला को पता है कि ये मौजू जो है एक दौर आएगा कि बहुत अहम हो जाएगा। बहरहाल ये एक इशू खत्म हुआ, अब अगला इशू इसको गौर से सुनिएगा। मैं आपको भी बता दूं, ये जो दो तीन आयतें हम पढ़ने लगे हैं, ये इश्यूज आपको समझ कोई नहीं आने, बस सुने और सुन के मान के आगे चलते जाइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आपकी मदद की। आयत नंबर 50, या अय्युहन नबीयू, ए नबी, नोट किया पहले क्या था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वालों के लिए था हुक्म। अब जो हुक्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कुरान पाक में अहकामात जो हैं वो तीन किस्म के हैं, पहले भी बताया आप दोहरा रही हो। पहली बात है कि नबी को मुखातिब किया जाता है तो उम्मत भी उसमें आ जाती है, और सारे हुक्म ऐसे हैं कुरान के। दूसरे काम आते हैं कि कहा नबी को जाता है लेकिन सिर्फ उम्मत मुराद होती है। इसमें वो काम आता है जिसमें किसी गुनाह पे रोका गया, तौबा की तौफीक दावत दी गई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ऐसे किसी गुनाह की उम्मीद नहीं थी। तीसरे काम वो हैं कि जिसमें कहा नबी को है तो सिर्फ नबी मुराद है, उम्मत नहीं। तो ये आयत तीसरी कैटेगरी की आयत है। क्या है, या युहन नबी यू, ए नबी, इन्ना हललना लका, बेशक हमने हलाल कर दिया आपके लिए, अजवाज का, आपकी अजवाज को, आपकी बीवियों को आपके लिए हलाल करार दे दिया। कौन सी, अल्लाती, ये अल्लाती का अगर आप लाम लंबा नहीं करेंगे ना तो वाहिद होगा अल्लाती, एक औरत, लेकिन अल्लाती जो है था ये जमा है उसी की, बहुत सारी औरतें मुराद है, वो औरतें। आतई त उजूरा हुन्ना, आतई तयूती क्या होता है, आपने दिया, आपने अदा किया, उजूरा हुन्ना उनके मेहर को। यानी ये बात तो साफ समझ आ गई कि नबी हमने आपकी तमाम बीवियों को आपके लिए जायज करार दे दिया जिनके आपने हक मेहर दी। इतनी बात तो सिंपल है, नथिंग रॉन्ग। दूसरी चीज, वमा मलकत जमीनुक, और इनको भी जो आपकी मिलके जमीन में है, बांदियां लौंडियां, ये भी आपके लिए जायज है। कौन सी, मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक, वो जिनको लौटा लाया अल्लाह आपके ऊपर फै के तौर पर। ये लफ्ज है ना अफा, पीछे गुजरा लेकिन इधर शक्ल इसकी बदली हुई है। हमने पढ़ा था सूरत अनफाल में माल गनीमत और माल फै, फर्क पता है सबको। माल गनीमत क्या है, दुश्मन से लड़ाई के नतीजे में जो माल आता है। माल फै के लड़ाई की जरूरत नहीं है, बगैर लड़ाई के आ जाता है हाथ माल बाज दफा, जैसे कुछ जंगों में हमने पढ़ा। इसी तरह टैक्स, जिजिया, यानी बगैर लड़ाई के दुश्मन से जो माल मिल जाता है उसको माले फै कहते हैं। यहाँ फै मुराद है, यानी जंगों में बाज दफा आ जाती थी। और मिस्र के हाकिम मकोकस ने हजरत मारिया किप्तिया को आपकी खिदमत में हदीये के तौर पर भेजा था। तो गोया के यहाँ दूसरी बात भी कॉमन है कि जिस तरह दूसरे मुसलमानों के लिए लौंडियां जायज हैं, जबकि जंगों के अंदर वो बांदियां बनाकर आ जाएं और खलीफा वक्त या हुक्मरान जो भी है वो उनको दे दे तो वो जायज हैं, तो आपके लिए भी जायज हैं। अर्नब से सल्लम की दो लौंडियाँ थीं, एक तो मारिया किबतिया थी और दूसरी हज़रत रेहाना थी, जिनके बारे में आता है कि उनको आपने फिर आज़ाद कर दिया था, लेकिन ये दोनों यहूदी नस्ल से थीं और आपने इनको अपने निकाह में रखा, और आपका बेटा इब्राहिम भी मारिया के वतन से था। आगे नबी की सारी बीवियों का जिक्र आएगा तो उसमें इंशाल्लाह इनका थोड़ा जिक्र और भी आ जाएगा। ये बात भी हो गई। तीसरी चीज़ इसी आयत की, वह बनाती अम्मी का, और बेटियां आपके चचा की, वह बनाती अम्माती का, और बेटियां आपकी फुफियों की, वह बनाती खाली का, और बेटियां आपकी मामुओं की, वह बनाती खालाती का, और बेटियां आपकी खालाओं की। कजन मैरिज, जिस दौर में नबी सल्लम आए थे उस वक़्त तक यहूदियत और नसरानियत ने खुद साख्ता तौर पर कजन मैरिज को हराम करार दे दिया था, जिसका आज भी आपको कुछ अक्स दिखता है कि वेस्टर्न कल्चर में लोग कजन से शादी पसंद नहीं करते और गुमान क्या देते हैं कि ये हमारी बहनें, हम इनको अपनी बहन ही समझते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी से इस काम को भी लिया गया, और यहाँ नोट कर लीजिए, अभी तक जितना जिक्र हमने हजरत जैनब से निकाह का पढ़ा है तो उसमें हजरत जैनब के साथ निकाह में एक तो ये रस्म टूटी थी कि आप नबी सल्लम के मुंह बोले बेटे की मुतल्लिका थी, और दूसरी ये कि वो आपकी कजन भी थी, फूफो की बेटी थी ना। तो आपके जरिए से अल्लाह ताला ने ये कानून दे दिया, आपकी यानी कजन से भी आपकी शादियां हो सकती हैं। शर्त एक है जो खास नबी के लिए थी, अल्लाह ती हाजर नमक, वो औरतें जिन्होंने आपके साथ हिजरत की, ये है खास चीज अल्लाह के नबी के लिए। आम मुसलमान मर्द किसी भी औरत से शादी कर सकते थे, इवन मदीना में आगे हिजरत करके बाद में मक्का में रहने वाली किसी औरत से शादी कर लें, मिस्र जाएं तो वहां की किसी औरत से शादी कर लें जो मुस्लिम हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खवातीन से शादी की ये सब की सब हिजरत करके आई हुई थी, समझ आई? यानी हिजरत के बाद औरत का ईमान और दीन पक्का हो जाता है, पता चल जाता है कि ये मुआशरे के अंदर रह सकती है और नबी के राज साथ दीन के जो रास्ते में मुश्किल आती है उसको सह सकती हैं। तो ये एक आपकी तख़सीस थी, तख़सीस से अव्वल लिख लीजिए। अगली चीज़ जो आपके लिए खास थी वो क्या है, वम्रअतम मोमिनतन, और वो ईमान वाली औरत, इम वहबत नफ्सहा लिन नबी जी, अगर वो हिबा कर दे अपना नफ्स नबी के लिए, इन अरादन नबी यू, अगर इरादा करे नबी, यस्तन के हा कि वो उसे अपने निकाह में ले आए बगैर मेहर के, ये भी जायज़ है। ये थी तख़सीस दोयम नबी सल्लम की। आम निकाह में हक मेहर लाजमी होता है और वली भी होता है, आपको पता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मसरूफ इंसान थे, आपके पास इतने ज्यादा और मसले थे, अल्लाह ताला ने आपको कुछ चीज़ों में एग्जेम्प्ट कर दिया, उसमें से एक चीज़ ये थी कि अगर कोई औरत बगैर हक मेहर के आपके निकाह में आना चाहे तो आपको इसकी इजाजत थी, ये अल्लाह ने इजाजत दी है। अब इस पे कई दिमागों में हूँ हाँ आएगा तो उसको ठंडा कर दीजिए कि अल्लाह के नबी ने इस रुख्सत को लिया ही नहीं, सारी जिंदगी आपने हर बीवी का हक मेहर दिया, ये मुराद है। यानी अल्लाह ताला ने आपको बार बार निकाह होते हैं, और हमारे यहाँ तो हक मेहर इज नॉट अ बिग डील, अरबों में बहुत बड़ी डील है। आज भी आपको पता है लड़के 25-30 साल के हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए अरब लड़कों की शादी नहीं होती कि वो हक मेहर के तौर पर लड़की का रहन सहन घर बार नहीं बना पाते। एक शादी पूरी करे आप, दूसरी शादी हो जाए, फिर उसका हक मेहर दें, फिर तीसरा दें। तो अल्लाह ने नबी सल्लम को इस पे एग्जेम्प्ट कर दिया। खालिसत अलग, ये खालिस है आपके लिए, क्या ये रियायत, ये एक्सेप्शन आपके लिए खालिस है, मिन दूनिल मोमिनीन, दूसरे मोमिनों से अलहदा, यानी दूसरों को इसकी इजाजत नहीं। आज कोई दूसरा मर्ज ये नहीं कह सकता कि हक मेहर के तस्करे के बगैर भी हो जाए। इसी तरह नबी सल्लम के पास ये खवातीन खुद आके भी अपना आप हिबा कर सकती थी। एक औरत है वो कहती है अल्लाह के नबी मुझे आपसे निकाह की ख्वाहिश है, तो अगर आप चाहें तो उसकी ये बात को एक्सेप्ट करके उसे निकाह कर सकते थे, ये खालिस बात थी आपके लिए। क्यों भाई? अल्लाह ताला कहते हैं कद अलिमना मा फरदना अलैहिम, हमें खूब पता है हमने आम मोमिनों पर क्या फर्ज किया है। यानी तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्यों क्या कैसे क्वेश्चन क्यों करते हो, हमें पता है कि हमने क्या फर्ज किया है। फी अज़वाज ही, उनकी बीवियों, पमा मलकत ईमानुहुम, और उनकी बीवियों के जिम्मन में। एक आम मुसलमान एक वक्त में 4 से ज्यादा बीवियां अपने निकाह में नहीं रख सकता। इसी तरह जो बांदियां होती हैं उनके बारे में भी कुछ शरायत हैं, पाबंदियां हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं 5वें पारे में डिटेल से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमें अच्छी तरह पता है कि नबी को हम किस चीज़ की रुख्सत दे रहे हैं और आम मुसलमानों को किस चीज़ की दे रहे हैं। ये सब क्यों किया, यानी अब सवाल आता है अल्लाह के नबी को ये रुख्सतें क्यों दी जा रही हैं, तो जवाब सुन लीजिए, लिकैला यकून अलैका हरज, ताकि आप पर कोई तंगी ना रहे, आप अपने कामों को सुकून से करें। हर वक्त अगर इन्हीं चीज़ों में रहें तो फिर आप दीन के काम उस तरह से नहीं कर सकते। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह सुबहान तआला बहुत बख्शने वाला और मेहरबान भी है। अब आप देखिए कि यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लम की एक से ज़्यादा शादियों की बात हो रही है, कोई हद नहीं है, चार से ज़्यादा है तअद्दुद इज़वाज है। इसीलिए अगली आयत को भी पढ़ लें, मैं एंड पे इसको भी इंशाल्लाह ले लेती हूँ। आयत 51 देखिएगा, तुर्जी मन तशाओ मिनहुन। अब ये तीसरी तख़सीस है, दो आगे हो गई, ये थर्ड थिंग है। तुर्जी आप हटा दें, मन तशाओ जिसको चाहे, मिनहुन्ना उनमें से, व तु वी और जगह दें। तू वी क्या है? आवा यू वी से, मावा बीसी से लफ। आप जगह दें इलाई का अपनी पास, मन तशाओ जिसको आप चाहें, यानी आपको पूरी इजाजत है कि अपनी अजवाज मतहरात के दरमियान अगर आप मसावात या बराबरी इक्वालिटी ना भी कर सकें तो डोंट वरी। एक बीवी के पास ज्यादा दिन रहें, एक के पास ना रहें, एक के पास रात को रहें, एक के पास दिन को रहें, नो प्रॉब्लम। ये क्यों था? ये भी आपको रुख्सत दी गई, हिकमत इसकी इंशाल्लाह मैं आगे दिखती हैं। फिर इसके बाद एक और भी आपको रुख्सत दी जा रही है, और वो क्या? वमन इब्तगैता, और वो जिनके लिए आपने चाहा, क्या? मिम्मन अजलता, उनको जिनको आपने दूर कर दिया। तो फला जुनाह अलैका, आप पर कोई गुनाह नहीं है। एक स्ट्रेच में क्या होगा? और जिनको आपने दूर कर दिया, यानी अपनी बीवियों में से किसी को अपने से दूर किया, इनमें से किसी को अगर दोबारा लाना चाहें, इब्तगैता में क्या चाहना, तलब, ख्वाहिश, यानी जिनको अलग कर दिया था अब उनको वापस लाना चाहें, तो फला जुनाह अलैका, फिर भी कोई गुनाह नहीं। मकसद कहने का क्या है कि अपनी सारी बीवियों के साथ आप जो मर्जी मामला करें, नो प्रॉब्लम, आपको खुली छुट्टी है। ऐसा क्यों होगा? जालिका दना, ये बात कौन सी? ये जो ऊपर की बात है, इब्तगैता और अजलता, ये बात ज्यादा करीब है अन तकर्रा, ये के ठंडी हो जाए, ऐनुहुन्ना उनकी आंखें, वला यहज़न्ना और ना वो रंजीदा हो, वयरदैन बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना, और वो सब की सब राजी रहें इस पर जो भी आप इनको दें। यानी आपको ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि अज़वाजे मुतहरात आपकी तरफ से किसी चीज या किसी सलूक को अपना हक ना समझें, जो कुछ भी इनको मिले वो इनायत समझते हुए खुशी से कबूल करें। देखिए आज भी देखिए कोई मसरूफ शख्स जो होता है ना, जैसे सदर हैं, वजीर हैं, कोई स्कॉलर हैं, दाई दीन है, उनकी बीवियाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती हैं। एक वो शौहर है जो हर रोज घर आता है और शाम को सुबह जाता है, और एक रूटीन के साथ बीवी के साथ काम भी करवाता है, जो भी एक रूटीन लाइफ होती है। एक बहुत मसरूफ इंसान है, इधर से उधर, उधर के मसले उधर के, तो उनकी बीवियों को सेट करना पड़ता है। आप पढ़ते हैं कई लोगों की बीवियों की कहानियां, मैंने खुद पढ़ी है ऐसे आज के दौर के, इवन कुछ स्कॉलर्स हैं, उनकी बीवियां कहती हैं कि हम खुशी से इनके साथ बर्दाश्त करते हैं, कई के दिन घर नहीं आते, आते हैं तो हम फिक्र रखते हैं कि घर पर सुकून हो, खाना तैयार हो, इनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये जहनी काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही काम एक औरत अगर दीन का काम कर रही है तो उसका शौहर भी उसके लिए करता है, और ना करे तो दीन फैलता ही नहीं। और ये दीन के काम का नकद इनाम मिलता है दुनिया में, कि आपके घर वालों के दिल में अल्लाह आपकी वो मोहब्बत डाल देता है जो सोने चांदी हीरे जवाहरात देकर आप नहीं डाल सकते। बाज़ लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे लोग मर्द पीछे फिरते हैं, कोई दुमछल्ला कैसे बन जाता है, ये तो लोगों की बेकार बातें हैं। अच्छे कपड़े पहने बीवी तो मियाँ बहुत खुश होगा, अच्छे खाने पकाएगी, कुछ भी नहीं है, वल्लाह ही इसका कोई हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अता होती है। तो अल्लाह ताला अपने नबी को यहाँ बता रहे हैं कि आपकी बीवियों को साफ बता दो कि अब तुमने नबी की बीवी रहना ये कितनी बड़ी ऑनर है। और आपको पता है कि एक औरत है वो अपने मर्द के साथ बाज़ दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रही होती है? चलो कुछ साल की बात है, ये पढ़ रहे हैं, ये जॉब डबल कर रहे हैं, इनको बहुत एक्स्ट्रा काम है ऑफिस में, ये बाहर दुनिया के कामों में, दो चार साल की कुर्बानियों से फिर दोनों खूब मज़े से रहेंगे, है ना? इवन ऐसे मैं फैमिलीज़ को जानती हूँ, मेरी अपनी फैमिलीज़ में है कि मियाँ भी डॉक्टर है, बीवी भी डॉक्टर है, शादी हो गई फ़ौरन पढ़ने के बाद, अब वो स्पेशलाइज में बीवी कहीं और जाती है किसी और शहर में, मियाँ कहीं और जाता है, अब शादीशुदा जो है घर वो इधर है, मिसाल है, और बीवी जो है वो अपने पढ़ने के लिए उधर से 2 घंटे दूर कहीं रह रही है, मियाँ इधर से 4 घंटे दूर आ रहे हैं, सब वीकेंड्स में आके मिलते हैं, और 10-12 साल हो गए उनकी शादी को, अभी तक यही चक्कर है, कर रहे हैं ना, कुर्बानियाँ देते हैं। तो नबी की बीवियों को जन्नत में नबी से जो कुर्बत मिलनी है, जो आपका मुकाम होगा, देखिए नबी के साथ रहेंगी तो नबी वाला ही मुकाम आएगा ना उसके अंदर, बीवी का स्टेटस तो वो बन ही जाता है जो शौहर का होता है। मैं कहती हूँ कितनी खुशकिस्मती है कि अल्लाह नेक शोहर दे दे और वो नेकियां करे और हम उनके साथ दुमछल्ले की तरह लग के जन्नत में पहुंच जाए, और आपको अल्लाह ने एक बीवी दे दे, आप उसके साथ कॉपरेट करते हुए फराइज को निभाते रहे, अल्लाह आपको उसके साथ जन्नत में ले जाए। तो ये तो गिव एंड टेक का मामला है। तो बीवियों को असल में यहां सुना दिया कि बाप जरा आराम से रहिएगा, एक शख्स के लिए एक बीवी को खुश करना कितना मुश्किल है, और कहां फिर इतनी बीवियां, 8-9 बीवियां इकट्ठी थी, और आप देख सकते हैं कि पहली के बाद दूसरी बीवी की मर्द को खुशी हो सकती है, तीसरी चौथी की खुशी नहीं हो सकती, जस्ट फॉर चेंज दूसरी बीवी आ गई बहुत अच्छी है। देखिए ये आज का मौजू इतना ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर इस्लाम पे कीचड़ उछाला, और बढ़ के सबसे नबी सल्लम पे, उस पर हम बात अलग करते हैं, लेकिन इस आयत को पहले समझ लीजिए कि नबी सल्लम ने इस आयत को किस तरह लिया। आप पूरी कोशिश करते थे इंसाफ के साथ रखे, और जिस बीवी के पास रात को रहना होता था, बाकी बीवियों को असर और मगरिब के बीच में जाकर आप उनकी जरूरियात पूछ के आते थे, लेकिन यहां तक मुख्तात बात आती है कि आप उनसे जिस्मानी कुर्ब नहीं आमतौर पर हासिल करते थे ताकि जिस बीवी के पास रहना है उसकी ख्वाहिश पूरी कर सको। लेकिन ऐसी भी हदीसें मौजूद हैं कि एक दफा अल्लाह के नबी ने सारी बीवियों से ताल्लुक कायम किया और बाद में इकट्ठा गुसल किया। तो वंस अ वाइल कभी कोई बात हो जाना वो एक दूसरे तरीके की बात है, लेकिन आप नमाज असर के बाद बारी बारी जाते थे और ख्याल रखते थे, और आप क्या कहा करते थे, दुआ मांगते थे अल्लाह ताला से, अल्लाहुम्मा हाज़ा कस्मी फी मा अमलिकु, ए अल्लाह ये मेरी तकसीम है जिसका मैं इख्तियार रखता हूँ, फला तुलुमनी मी फी मा तमलिकु वला अमलिकु, मुझे उस मामले में मलामत ना करना कि जिसके बारे में मेरा इख्तियार नहीं बल्कि तेरा इख्तियार है। मतलब यह कि हजरत आयशा के लिए दिल में आपकी मोहब्बत ज्यादा थी, तो आप फरमाया करते थे कि अल्लाह मैं जाहरी मामलात में तो बराबरी कर सकता हूँ ना, देखिए ना 1 किलो गोश्त कहीं गया तो दूसरी के भी चला गया, 1 किलो सब्जी उधर गई उधर, ये तो कर सकता है, लेकिन मेरा दिल आयशा से मोहब्बत में झुकता है। और आप सब जानते हैं कि मोहब्बत बंदा नसीब से लेता है, हर बच्चे का नसीब फर्क है। बाज दफा आप कहते हैं दूसरी शादी कर दी तो मियाँ आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे, मैं कहती हूँ जिनके नहीं करते उन्हें के करें शादी दूसरी, आपसे वो मोहब्बत शुरू हो जाएंगे करना। बाज एक अकेली है और सारी जिंदगी रोती रहती है। आप मुझे सच बताएं कि एक बीवी जिनकी है और हमारे कल्चर में तो एक ही है, क्या सबके मियाँ उनसे अटूट मोहब्बत करते हैं? बल्कि अच्छा दो करेंगे, आधी लड़ाई आपसे लड़ेंगे आधी उनसे लड़ेंगे, आधे कपड़े आप धोएंगे आधे वो धोएगी, एक दिन खाने की आपकी छुट्टी एक उसकी, ये तो आपके लिए ब्रेक होगी, इंटरवल है आपके लिए। नसीब से मोहब्बत मिलती है, और बार दफा देखा गया पहली बीवी की कदर ही कब आती है जब दूसरी बीवी आ जाती है। तो ये कभी ना सोचें कि दूसरी आएगी तो मेरा नसीब ले जाएगी, मुतमईन हो के अपने नसीब पर राजी होके बैठे रहे। तो अल्लाह के नबी ख्वाहिश रखते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद सूरत निसा में यह बात फरमा दी, वलन तस्तती वंतातिलु बैनन निसाई वलो हरस तुम, ये हो ही नहीं सकता कि तुम बीवियों के बीच में अदल करो अगरचे तुम्हें इसकी हिरस हो। हाँ करना क्या नहीं, फला तमीलु कुल्लल मैली, पूरे का पूरा ना झुक जाओ कि पता चले अब नई बेगम के साथ इतना दिल लग गया कि महीनों अब दूसरी की तरफ जा ही नहीं रहे, कि फतजरू हकल मुअल्ला का कि उसको लटकती हुई छोड़ दो, वइन तुस्लिहु वतत्तकू फइन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, फिर अगर तुम इस्लाह करो और तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तो गोया कि यहाँ कह के बता दिया कि आपको इजाजत है, अगर कोई 19-20 हो गई तो हम आपको माफ कर देंगे। वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह खूब जानता है जो आपके दिल में है या आपके दिलों में है। मा फी कुलूबिकुम, यहाँ जमा का सीगा क्यों आया है? देखिए बात तो नबी की हो रही है ना, लेकिन हालात इस तरह के दूसरे लोगों को भी तो पेश आ सकते हैं ना। तो जिस मर्द की एक से ज्यादा बीवियां हों और वो पूरा इंसाफ करना चाहता है लेकिन बीवियां खुश ना हो, तो अल्लाह कहते हैं वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम, ओ मुसलमान मर्दो तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है और हिल्म वाला है।